ओम शांति। 6 नवंबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ी सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे देही अभिमानी भा, देही अभिमानी भा, देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है, सुरक्षा है, बचाव है। तुम श्री मत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। तो जितना सेवा में बिजी रहेंगे तो देह अभिमान आने वाला नहीं। प्रश्न, विकर्मों का बोझ सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी? विकर्मों का बोझ सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी? उसे हल्का करने की विधि सुनो। हाँ जी, हलचल में रहेगा और उसे हल्का करने का तरीका जब तक विकर्मों का बोझा है तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती, उसको ज्ञान समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान उसको समझ में आ जाए तो उसने जो पाप कर्म किए हुए हैं उनका दुख कैसे ले? तो ज्ञान तो यही है ना, ना दुख दो ना दुख लो। वो दुख लेगा नहीं, अब उसने तो कर्म किए हैं तो उसका दुख तो लेना पड़ेगा ना, और दुख लेगा तब जब उसको ज्ञान ना हो। ज्ञान हो तो फिर वो दुख कैसे लेगा?
नहीं, पहले का ही उसको क्रेडिट नहीं मिला है, डेबिट में है तो उसको तो फिर
लेना पड़ेगा ना, इसलिए उसको ज्ञान समझ में नहीं आएगा।
तो समझने के लिए उपाय क्या है?
आएगा भी तो भी उसे ज्ञान धारणा नहीं होगी, क्योंकि उसने अपने विकर्मों की सजा लेनी है उसे, इसलिए उसे ज्ञान समझ में नहीं आएगा। जिसको ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लेना है कि उसके विकर्मों का बोझा है, इसलिए उसे ज्ञान समझ में नहीं आ रहा और वो दुखी हो रहा है। जब तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती, जब इसका हिसाब किताब बराबर हो जाएगा फिर उसको ज्ञान समझ में आएगा, फिर उसको ज्ञान समझ में आएगा। कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते हैं, क्योंकि उसके जो पिछले कर्म है ना वो उसके ज्ञान में रोकने के कारण बनते हैं, जिसके कारण वो बेशक दोष किसी को देता रहे कि पति नहीं आने देता, पत्नी नहीं आने देती, वो नहीं आने देता, वो नहीं आने देता, क्या करूं, पोता दोता, कोई ना कोई ऐसा रुकावट बनेगा जिसके कारण वो ज्ञान सुनने, ज्ञान की धारणा करने में रुकावट बनते रहे। वरना तो सभी बराबर है, सभी आ जाए, ठीक है, भीड़ हो जाए, परंतु ज्ञान कैसे सुने, ज्ञान कैसे समझे, उनको तो अभी अपना हिसाब किताब बराबर करना है। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले निद्रा जीत बनो, नींद को जीतने वाले निद्रा जीत बनो, रात को जाग कर बाबा को याद करो। रात को जाकर बाबा को क्या करे? हमने कोई माला जाप नहीं करनी, हमने कोई शिव बाबा नहीं करना, मीठा बाबा प्यारा बाबा नहीं करना, हमने सिर्फ कोई चित्र को देखते नहीं रह जाना।
अपने आप को समझाना,
हमने बाबा की बातें जो मुरली में बाबा सुना रहे हैं वो बातें अपने आप को समझानी है कि हमें बाबा की श्री मत पर ऐसे चलना है। निद्रा जीत बनो, रात को जागकर बाबा को याद करो, अर्थात बाबा की श्री मत को अपनी बुद्धि में सेट करो कि इस समय के लिए ये श्री मत है, इस बात के लिए ये श्री मत है, इस काम के लिए ये श्री मत है। क्योंकि हमारी एक एक श्री मत हमारी बुद्धि में सेट रखी होगी तो जिस समय जिस श्री मत को यूज करना है हम उसको यूज कर सकेंगे। नहीं तो अब क्या करें, बाबा ने क्या कहा, भाई मुरली उठाओ, मुरली में पढ़ो। अब उस समय मुरली में ढूंढेंगे मिल तो जाएगी, परंतु सेट की हुई और ढूंढने वाली में टाइम तो लगेगा ना।
वाह,
तो बोझ हल्का हो जाएगा। क्योंकि समय पर कोई मुसीबत आएगी, कोई दुख आएगा, कोई कष्ट आएगा, कोई समस्या आएगी, इस समस्या के लिए बाबा ने क्या कहा है, माँ मरे तो हलवा खाओ, बाप मरे तो हलवा खाओ। हमने हलवा बना के खाना है क्या? बाबा इस हलवे को खाने के लिए कह रहा है क्या? वास्तव में खुश रहो, वास्तव में खुश रहो। हलवा खाते जब खुशी होती है, चाहे हलवा खाने के बाद खुशी हो, चाहे हलवा बनाने के टाइम पर खुशी हो, खुशी है तो हलवा खाएंगे ना। तो हमें कहने का मतलब मिठाई है ना, ये तो मिठाई तभी खाई जाती है, बांटी जाती है जब खुशी होती है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, ब्राह्मण जीवन माना खुशी का जीवन। कुछ भी हुआ, कैसा भी हुआ, अच्छा हो रहा है वो भी अच्छा, होगा वो भी अच्छा, ये ज्ञान की धारणा है। जिसको ये बात धारणा में आ गई वो कभी दुखी नहीं होगा। गीत, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता, ओम शांति। ये हुई जगत अम्बा की महिमा, ये हुई जगत अम्बा की महिमा। क्योंकि ये है नई रचना, एकदम नई रचना तो होती नहीं, पुरानी से नई होती है, पुरानी से नई होती है। मृत्यु लोक से अमर लोक जाना है, ये जैसे जीने और मरने का सवाल है। ये क्या है, जैसे जीने और मरने का सवाल है। या तो मृत्यु लोक में मर कर खत्म होना है, या तो जीते जी मर कर अमर लोक में चलना है। जगत अम्बा जगत की माँ माना, जगत को रचने वाली, ये जरूर है बाप स्वर्ग का रचयिता है। रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता हूं, आना है संगम पर। कहते भी हैं कल्प के संगम युगे हर संगम युग पर आता। ये लाइन लिखने में समझने में गड़बड़ करती है। हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि बाबा कल्प कल्प हर कल्प के संगम युग पर आते हैं। तो इन्होंने लिखा कल्प के संगम युग, ये तो ठीक है कि कल्प के संगम युग पर आते हैं, पर तो हर संगम युग आता हूं ये गलत। हर कल्प कल्प के संगम युग आता हूं क्लियर समझानी है, ये बात स्पष्ट करके समझानी है। सिर्फ मनुष्य ना भूल कर नाम बदली कर दिया, मनुष्यों ने भूल कर क्या कर दिया, शिव बाबा की जगह पर नाम कृष्ण का लिख दिया। शिव बाबा वाली गीता उनको मिली नहीं, शिव बाबा वाली गीता उनको मिली नहीं, उन्होंने एक नई गीता लिख जिसके कारण बेड़ा गर्क हो गया। सर्वव्यापी का ज्ञान जो सुनाते हैं उसमें पूछना पड़ता है ये किसने कहा, और दुनिया वाली उस गीता के अंदर भी क्या लिखा है सर्वव्यापी है, जो दुनिया वाली गीता है उसमें भी मैंने आपके साथ बात किया था। मैं वही बता रहा हूं कि मैंने एक दिन बैठकर जहां जहां सर्वव्यापी लिखा है वो सारे शब्द जिस जिस श्लोक में थे उन श्लोकों को मैंने अलग किया और उस श्लोक में से सर्वव्यापी जिस शब्द का अर्थ दिया है जिस श्लोक में दिया है एक भी शब्द नहीं मिला जिसका अर्थ सर्वव्यापी हो। वहां पर जो शब्द मिले वो मिले सर्वगमन सर्वगत है। वहां शब्द जो भी मिले वो सर्वगमे या सर्वगते या उन्होंने अपनी मर्जी से एवें भगवान के नाम के साथ सर्वव्यापी एवें लगा दिया है, उसकी वहां लगाने की जरूरत ही नहीं है। सर्वगमे और सर्वगते का अर्थ होता है कि सब जगह जा सकते हैं, सब जगह जाता है। परमात्मा आत्मा जब उनका पार्ट जहां है वो वहां एक सेकंड से भी पहले पहुंच सकते हैं। ये बात हमें समझ में आ गई है कि आत्मा को एक सेकंड भी नहीं लगना कि वो जहां भी पहुंच जाए, तो परमात्मा को भी वहां पहुंचने में समय नहीं लगता। तो परमात्मा सब जगह जा सकता है, सब जगह है तो नहीं ना, सब जगह होना और सब जगह जा सकने में अंतर तो होता है ना। तो जिसके कारण उन्होंने सब जगह जा सकता है तो उन्होंने कह दिया सर्वव्यापी है। और एक दूसरी कहां से एग्जाम्पल, कहां से सर्वव्यापी की बात आई, भागवत के अंदर दिखाया कि नारद जो है कृष्ण को देखने के लिए जाता है, किसने 16108 रानियां रखी हैं, ये कब पहुंचता होगा किसके पास, 16108 शादियां की। तो नारद ने उसके जहां भी गया 16108 के पास वहां उससे पहले कृष्ण बैठा हुआ था और वो काम कर रहा था जो मतलब मेरे आने के बीच में शुरू भी नहीं हो सकता, कि मेरे से फास्ट चलता हो कि भागता हो कि कृष्ण वहां जा रहा है, नारद वहां जा रहा है मुझे देखने के लिए तो मैं भाग के फटाफट पहुंच जाऊं। मतलब नारद से जल्दी मतलब पहुंचना समझो, कुछ भी समझो, मतलब उन्होंने ये दिखाया कि जहां गया वहां कृष्ण हाजिर मिले, तो अब इसलिए उसने कह दिया सर्वव्यापी। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि सर्वव्यापी ज्ञान ने जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया। उसमें पूछना पड़ता है किसने कहा कि सर्वव्यापी, कब कहा कि मैं सर्वव्यापी हूं, कहां लिखा हुआ है कि मैं सर्वव्यापी हूं, कितना क्लियर शब्द है, कहां लिखा है कि मैं सर्वव्यापी हूं, एक भी शब्द नहीं मिला जिसका अर्थ सर्वव्यापी हो। क्योंकि इसी शब्द ने मुझे प्रेरित किया कि तुम गीता उठाओ और देखो, 18 अध्याय तो है, एक एक में सारे श्लोक जहां जहां हिंदी में सर्वव्यापी लिखा था कहीं भी नहीं लिखा। अच्छा, गीता का भगवान कौन जो ऐसे कहते हैं श्री कृष्ण तो देहधारी है, वे तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। जब वो कहते हैं कि कृष्ण देहधारी है वो फिर सर्वव्यापी हो कैसे सकता। कोई भी देहधारी को तो कहीं भी पहुंचने मिले, देह के बिना तो पहुंच ही नहीं सकता। आत्मा तो बिना देह की है, उसे तो सेकंड में यहां पाठ बजाया, सेकंड से पहले वहां, सेकंड से पहले वहां, परंतु जो देहधारी है वो तो सर्वव्यापी हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण का नाम बदल जाए तो बात आ जाती है बाप पर, बाप को तो वर्षा देना है। कहते हैं मैं राजयोग सिखाता हूं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा देने के लिए मैं आता हूं, नहीं तो 21 जन्म का वर्षा उन्हें किसने दिया। लिखा भी हुआ है ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे, ये भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे। कैसे ब्राह्मण रचे, यहां पर हमें गलतफहमी हो गई, हमने समझ लिया कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से निकल के आ गए, ब्रह्मा की भुजा से क्षत्रिय निकल के आ गए, ब्रह्मा के पेट से वैश्य निकल के आ गए, ब्रह्मा की जांघा से शूद्र निकल के आ गए। बस उन्होंने विराट रूप का चित्र बना दिया, मुख से देवता निकल रहे हैं, उन्होंने देवताओं को तो दिखाया ही नहीं कि देवता निकलते, उन्होंने क्षत्रिय वैश्य शूद्र को दिखा दिया विराट रूप में, ना तो ब्राह्मणों को दिखाया, ना ब्रह्मा को दिखाया, ना शिव बाबा को दिखाया। फिर ब्राह्मणों को बैठ नॉलेज सुनाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की परमात्मा आकर पहले ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण बनाते हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। तो नॉलेज देने वाला है वे, जरूर चित्र भी बनाएंगे समझाने लिए, वास्तव में इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात। हम सूर्य अर्थ को डायरी पर उठा के लाते हैं, पहले होता था लिखने पढ़ने की, बाबा कहते लिखने पढ़ने की तो कोई बात नहीं है, परंतु ये तो सहज कर समझाने लिए चित्र बनाए हैं ताकि सबको सहज रीति से समझाया जा सके, इनसे बहुत काम हो सकता है। तो जगत अम्बा काव्य की भी महिमा है, शिव शक्ति भी कहा जाता है। शक्ति किससे मिलती है? वर्ल्ड ऑल माइटी बाप से। वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी, ये अक्षर भी महिमा में देना पड़े। अथॉरिटी माना जो भी शास्त्रों की नॉलेज है वे सब जानते हैं। परमात्मा जो है जो भी दुनिया के किसी भी शास्त्र में लिखा हुआ है वो शिव बाबा जानता है। अथॉरिटी है समझाने की, वो समझा सकता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं, कहते हैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। तो अथॉरिटी हुई ना, तुम बच्चों को सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं, दुनिया नहीं जानती, दुनिया नहीं जानती कि धर्म शास्त्र किसको कहा जाता है, धर्म शास्त्र किसको कहा जाता है यही नहीं जानती। चार धर्म हैं, याद है किसी को चार धर्म? उनमें से एक धर्म है मुख्य, आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये मुख्य है, ये है फाउंडेशन आधार। बैनियंती का मिसाल भी दिया जाता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये परमपिता परमात्मा आकर हम ब्राह्मणों को सिखाते हैं। धर्म है आदि सनातन देवी देवता, जिसकी स्थापना परमपिता परमात्मा आकर करते हैं, जो सतयुग में भी नहीं आता। सतयुग में धारणा से आता है, सतयुग में कोई सिखाने वाला नहीं होता, सिखाया संगम पर जाता है। 100 वर्ष परमपिता परमात्मा आदि सनातन देवी देवता धर्म का धारणा करना स्थापना करना कार्य करते हैं। बैनियंती का मिसाल भी दिया जाता है, इनका फाउंडेशन सड़ गया है। फाउंडेशन क्या हो गया है? सड़ गया है। तन्ना भी उसका सड़ गया है, तन्ना तक कुछ भी नहीं है। तो तन्ना में क्या है? त्रेता सतयुग, ये तन्ना के अंदर आता है। द्वापर से शाखाएं खड़ी हैं, बीच में तना और जड़ नहीं है, शाखाएं खड़ी हैं सिर्फ, ठीक है, बाकी टाल टालियां खड़ी हैं। ये मिसाल है। दुनिया में झाड़ तो बहुत है, सतयुग में भी झाड़ तो होंगे ना, करके जंगल नहीं बगीचे होंगे। सतयुग में जंगल नहीं होंगे बगीचे होंगे। जंगल में और बगीचे में क्या अंतर होता है? जंगल में पेड़ सूखे हुए, उनकी कोई व्यवस्था नहीं, उनको कोई संभाल के रखने वाला नहीं, और बगीचे के अंदर हर फूल हर कली हर गली मतलब बहुत सेट करके सुंदर बना के रखी जाती है। जो भी सूख जाता है सड़ जाता है उसे निकाल कर फेंक दिया जाता है, वहां होता ही नहीं। काम की चीजें लिए जंगल भी होंगे वहां पर, काम की चीजों के लिए, क्योंकि बाकी जो अव्यवस्थित भी होगा जंगल भी होंगे, लकड़ा आदि चाहिए ना, तो जंगल से आएगा ना। जंगल में पशु पक्षी बहुत होते रहते हैं, परंतु वहां सब चीजें अच्छी फलदायक होंगी। वहां जंगल भी होंगे तो सब अच्छे होंगे फलदायक होंगे, पशु पक्षी भी शोभा है, परंतु गंध करने वाले नहीं होंगे, परंतु गंध करने वाले नहीं होंगे। ये पशु पंछी ब्यूटी तो चाहिए ना। सृष्टि ही सत्व प्रधान है, तब तो सब चीजें सतो प्रधान होती हैं। बहिष्ट फिर क्या है, स्वर्ग फिर क्या है? पहली पहली मुख्य बात बाप से वर्षा लेना है। चित्र बनते रहते हैं, उनमें भी लिखना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। ये अक्षर मनुष्य समझते नहीं, इसलिए विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है। विष्णु का एक रूप नहीं है, विष्णु के दो रूप है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। वो विष्णु को कंबाइन फैमिली दिखा देते हैं, चार हाथ दिखा देते हैं। विष्णु के दो रूप हैं, या तो लक्ष्मी बनेंगे या नारायण बनेंगे, ठीक है? बाकी होंगे दो हाथ। विष्णु को चार हाथ दिखाए हैं, परंतु विष्णु कोई चार हाथ वाला व्यक्ति नहीं होता। ये कंबाइन फैमिली का प्रवृत्ति मार्ग का रूप दिखाया है कि स्त्री पुरुष से ही प्रवृत्ति चलेगी। तो परंतु जो भी मेहनत करके विष्णु चतुर्भुज बनेगा, चारों अलंकारों को धारण करने वाला बनेगा, तो वही फिर लक्ष्मी बनेगा या नारायण बनेगा। ये तो समझते हैं, कोटों में कोई ही समझेंगे, क्योंकि ये बात तो सबको पता है कि भी सब तो बाबा का ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर की पढ़ाई पढ़ नहीं सकते। कोटों में कोई समझेंगे। फिर ये लिखा है, दुनिया वालों ने लिखा है, आश्चर्यवत सुनन्ति, कथन्ति और फिर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार अपना पद प्राप्त करते हैं। कहां ना कहां ये बातें लिखी हुई हैं। भगवानोवाद अक्षर भी ठीक है। भगवान की बायोग्राफी अगर बिगड़ जाए तो सारे शास्त्र खंडन हो जाए। भगवान की बायोग्राफी समझ में आ जाए तो फिर ये सारे शास्त्र क्या हैं? खंडित। ये शास्त्र भगवान के हैं ही नहीं, क्योंकि तो मनुष्यों ने लिखे हैं। देखने में आता है बाप दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते हैं। पहले पहले तो निश्चय चाहिए। पहले पहले क्या चाहिए? निश्चय कराना है कि भगवान ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। चैतन्य बीज में नॉलेज किसकी होगी? जरूर झाड़ की होगी। तो बाप आकर नॉलेज समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां नाम अच्छा है। प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां तो ढेर है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। ये तो रचना है ना, बाबा मम्मा अथवा तुम, मात पिता सब कहते हैं जगत अम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। ये तो प्रैक्टिकल में बीके है। काल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची थी, अब फिर जरूर ब्रह्मा द्वारा ही रचना होगी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, इसलिए इनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बीज में जरूर पूरे वृक्ष की नॉलेज होगी। जो उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि है, उनकी रचना क्या है? चैतन्य मनुष्य सृष्टि है। बाप राज योग भी सिखलाते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को बैठ सिखलाते हैं। जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। सुनने समय मजा तो सबको बहुत आएगा आता है, परंतु देह अभिमान के कारण धारणा नहीं होती। यहां से बाहर गए और खलास। अनेक प्रकार का देह अभिमान है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, देह अभिमान छोड़ो। देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। रात को जाग कर याद करना है, रात को जाग कर याद करना है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर की विकर्मों का बोझा बहुत है, विकर्मों का बोझा बहुत है जो तुमको धारणा करने नहीं देते हैं। कर्म ऐसे किए हुए हैं, इस कारण देही अभिमानी नहीं बनते। गपोड़े बहुत मारते, गपोड़े बहुत मारते हैं, बड़े गपोड़े का चार्ट लिख भेजते हैं कि हम 75% याद में रहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल। गपोड़े मत मारो। सबसे आगे चलने वाला खुद कहता है कितनी भी कोशिश करता हूं याद करने की, परंतु माया भुला देती है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि भी मैं बाबा को याद करने की कोशिश करता हूं, परंतु ये माया मुझे भुला देती है। सच्चा चार्ट लिखना चाहिए। बाबा भी बतलाते हैं ना, तो बच्चों बताते हैं ना, तो बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए। फॉलो नहीं करते तो चार्ट भी नहीं भेजते कि हमने कितना याद किया। पुरुषार्थ के लिए समय मिला हुआ है, ये धारणा कोई मासी का घर नहीं है, आसान काम नहीं है, इसमें थकना नहीं होता। थके तो फिर कर नहीं सकेंगे। थकता कौन है? थकता कौन है? जब उसे मजा नहीं आता, जब उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, जब वो, और ये दो बातें तब होती हैं जब वो श्रीमत पर नहीं चला। श्रीमत पर नहीं चला, समस्या का समाधान नहीं हुआ, खुशी गायब हो गई, थक गया। खुशी में नहीं आती शरीर, शरीर प्राप्ति हो रही है तो नींद नहीं आएगी। नींद आने का सिर्फ कारण होता है शरीर थका हुआ है, या दूसरा कारण होता है ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, खुशी नहीं मिल रही, प्राप्ति नहीं हो रही। दो कारण होते हैं, तीसरा कोई कारण नहीं है। नींद आने का एक शरीर का कारण है और एक खुशी ना आने का। बात समझ में नहीं आ रही है तो नींद आएगी आएगी, और बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, तो उसको नींद नहीं आ सकती। शरीर रात को नींद पूरी नहीं हुई है या शारीरिक थकावट है तो फिर वो सोएगा, फिर उसको जब कुछ भी कर लो जबरदस्ती वह आंखें खोलेगा, परंतु वो डब्बी बंद ही रहेगी। कौन मरेगा? सच है, जो सच है उसको समझना है ना, सच बुद्धि में रहे। नींद आने का कारण नींद पूरी नहीं है, क्योंकि नींद तो चाहिए शरीर को ना। कोई समझने में टाइम लेते हैं, आज नहीं तो कल समझ लेंगे। बाबा ने कह दिया है कि जो जीव देवी देवता धर्म का होगा और धर्म में कन्वर्ट हो गया होगा तो वो आ जाएगा,
वो
आ जाएगा। एक दिन अफ्रीकन आदि की भी कॉन्फ्रेंस होगी, भारत खंड में आते रहेंगे, आगे कभी आते नहीं थे, अभी सभी बड़े बड़े आते रहते हैं, जर्मनी का प्रिंस आदि, ये सब कभी बाहर निकलते नहीं थे। मतलब जर्मनी के प्रिंस आदि कभी बाहर निकलते नहीं थे। नेपाल का जो किंग था उसने कभी रेल देखी नहीं थी, अपने हद से बाहर कहां जाने का हुक्म नहीं था, भी कोई मार डाले तो इसलिए वो जाते नहीं थे। पोप कभी बाहर नहीं निकला था, अभी आया है, आएंगे सब, क्योंकि ये भारत सभी धर्म वालों का बहुत बड़े से बड़ा तीर्थ है, इसलिए यह एडवर्टाइज जोर से निकलेगी। तुमको सब धर्म वालों को बतलाना है, निमंत्रण देना है, ज्ञान फिर भी वही उठाएंगे जो देवी देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो गए हैं। इसमें समझ चाहिए, अगर समझें तो शंख ध्वनि जरूर करें, समझें तो शंख ध्वनि जरूर करें। हम ब्राह्मण है ना, हमको गीता ही सुनानी है, बहुत सहज है, बेहद का बाप है स्वर्ग का रचयिता, उनसे वर्षा पाना हमारा हक है, सबका हक है अपने पियर घर मुक्ति धाम में जाने का। मुक्ति जीवन मुक्ति का हक है, जीवन मुक्ति सबको मिलनी है, जीवन बंध से मुक्त हो शांत में जाते हैं, फिर जब आते हैं तो जीवन मुक्त है, परंतु सबको सतयुग में तो जीवन मुक्ति नहीं मिलती। सतयुग में जीवन मुक्ति में थे देवी देवता, पीछे जो आते हैं कम सुख कम दुख पाते हैं। ये हिसाब किताब है, सबसे कंगाल भारत ही बना है, जो सबसे ऊंचा था बाप भी कहते हैं। ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, देवी देवता धर्म क्या है, बहुत सुख देने वाला है। ये बनी बनाई है, ये बनी बनाई है, सब अपने अपने समय पर, सब अपने अपने समय पर क्या करेंगे, अपना अपना पाठ बजाएंगे। हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करते, हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करते हैं, और कोई कर ना सके। क्राइस्ट से 3000 साल पहले, ईसा मसीह से 3000 साल पहले बरोबर कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है हेवन था,
3000 साल
बाइबल में कुरान में इन ग्रंथों में इसका जिक्र है कि स्वर्ग कब था, क्राइस्ट से 3000 साल पहले था। नई दुनिया थी, क्राइस्ट कोई वहां थोड़े ही आएगा, क्राइस्ट तो अब जन्म लेगा। हाँ जी,
मतलब 12,500 साल के ऊपर
भाई, क्राइस्ट को तो 2000 साल हुए हैं, क्राइस्ट को 2500 साल थोड़ा हुए हैं, आज 2023 है ना, तो ईसा मसीह से 3000 साल पहले स्वर्ग था ना, इब्राहिम थोड़ा कहा है, इब्राहिम 2500 साल पर आया ना, वे अपने समय पर ही आता है, फिर उनको अपना पार्ट रिपीट करना है। ये सब बुद्धि में बैठे तो श्री मत पर चले, सब की बुद्धि एक जैसी नहीं है, श्री मत पर चलने की हिम्मत चाहिए। फिर शिव बाबा, आप जो खिलाओ जो पहनाओ ब्रह्मा और जगत अम्बा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे ना, तो दोनों कंबाइंड है, ब्रह्मा द्वारा ही कर्तव्य करेंगे, शरीर तो दो इकट्ठे नहीं है। लाइन समझ में आई है, फिर से देखो, मतलब जो पहनाओ ब्रह्मा और जगत अम्बा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे ना, तो दोनों कंबाइंड है, कौन कंबाइंड है, दोनों शिव बाबा और ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा ही कर्तव्य करेंगे ना, शरीर तो दो इकट्ठे नहीं है, कोई कोई कंबाइंड शरीर भी देखा है, बाबा ने सोल तो दोनों की अलग अलग हो गई
भाई, पैदाइशी बच्चे जुड़वा होते हैं
हाँ,
तो वो कमेंट नहीं है बाद में, वो डॉक्टर जो ऑपरेशन करके अलग अलग करते हैं।
ये देखो कंबाइंड नहीं होते ना, जब
एक ही पीठ किधर है एक किधर है, एक बच्चे पैदा हो गए।
हाँ पैदा हुए सही बात है, परंतु ये पैदा हुए दो आत्माएं अलग हैं, दो शरीर अलग हैं, वो किसी कारण से उनके कार्मिक अकाउंट के हिसाब से वो जुड़े रह गए, और फिर बाद में डॉक्टर उनको अलग कर सकते थे। कुछ ऐसी हालत में भी जुड़े होते हैं जिनको अलग नहीं कर सकते, वो जुड़े ही रह जाते हैं। मैंने एक देखा था वीडियो जिसमें दो लड़कियां जुड़ी हुई थी और फिर उनकी शादी एक व्यक्ति के साथ हुई, मतलब शादी भी दिखाई थी न्यूज में, और उसने जो है ना शादी किया, दोनों दो लड़कियां, दोनों आत्माएं अलग अलग, पूरे शरीर दोनों के, परंतु वो जुड़े हुए हैं और इकट्ठे चिपके हुए, तो उनको अलग करने से जीवन अलग अलग हुए, मतलब ये है, मतलब दो पत्नियां हो गई ना उसकी, मतलब दो आत्माएं दो शरीर, परंतु उन शरीरों को या तो बचपन में कोई अलग करने वाला सर्जन नहीं मिला जो उनको अलग कर सकता, जिसके कारण वो अलग नहीं हुए, तो उनकी शादी ऐसे होनी थी, उनका कार्मिक अकाउंट ऐसा था, तो इसलिए वो चिपके रह गए। है तो दो ना, दो केले चिपक जाते हैं, सर वही होता है,
दो तीन तीन केले,
हाँ तीन तीन केले भी चिपक जाते हैं, वो चिपकने का कारण होता है कि उनको फैलने का स्पेस नहीं मिल पाता। हाँ डबल ट्रिपल भी हो जाते हैं, तीन तीन केले वाला भी मैंने खाया, और ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ जी नहीं नहीं आठ आठ दस दस, हाँ 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 मैं वही बता रहा हूँ, ऐसे चूहे की तरह जो है ना बच्चे निकाल के रखे हाथ से, हाँ एक एक निकाल निकाल के दिखाए वीडियो में भाई, हमने देखा है ना जो बता रहे हैं। श्रीमत पर चलने की हिम्मत, अब कितने भी हो जाएं वो उनका पार्ट है, अब क्या कह सकते हैं, श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए। एक जैसी नहीं है, श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए, सबकी बुद्धि तो एक जैसी नहीं है ना, श्री मत पर चलने की हिम्मत चाहिए, फिर शिव बाबा आप जो खिलाओ जो पहनाओ, ब्रह्मा और जगत अम्बा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे ना, तो दोनों कंबाइंड है, कौन, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा द्वारा ही कर्तव्य करेंगे, शरीर तो दो इकट्ठे नहीं है, कोई कोई कंबाइंड शरीर भी देखा है बाबा ने, सोल तो दोनों की अलग अलग हो गई, दो शरीर चिपके हुए हैं, परंतु आत्मा तो दोनों की अलग अलग हो गई, इसमें बाबा प्रवेश करते हैं, वे है नॉलेजफुल, तो नॉलेज किस द्वारा दे, शिव बाबा को ज्ञान देना है, उसके पास अपना शरीर नहीं है, तो नॉलेज कैसे दे, किस द्वारा दे। श्री कृष्ण का चित्र तो अलग है, यहाँ तो ब्रह्मा चाहिए, प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कितने हैं, ये कोई अंधश्रद्धा तो नहीं है, इतने सारे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, एक दो चार दस बीस अंधविश्वास हो सकता है, परंतु ये तो कोई अंधविश्वास नहीं है। एडॉप्टेड चिल्ड्रन को भगवान पढ़ाते हैं, जिन बच्चों को बाबा आकर गोद लेते हैं उन्हीं को पढ़ाते हैं, कल्प पहले जो एडॉप्ट हुए वही अब होते हैं, बाहर ऑफिस में तो कोई नहीं कहेंगे हम भी के हैं, ये गुप्त हो गया। शिव बाबा की संतान तो है ही, बाकी रचना नई सृष्टि की रचना होती है, पुरानी से नया बनाते हैं, आत्मा में खाद पड़ने से पुरानी हो जाती है, सोने में ही खाद पड़ती है तो फिर झूठा हो जाता है, आत्मा झूठी होती है तो शरीर भी झूठा हो जाता है, फिर सच्चा कैसे हो, झूठी चीज को आग में डालते हैं पवित्र करने के लिए, जो झूठी चीजें होती हैं उसको बर्तन वगैरह साफ करने होते थे उसको आग में डालते रास्ते मांग दिया साफ हो। ये त्योहार आदि भी सब भारत के हैं, ये जो किसके मिले, ये जो किसके, ये किसके और कब के हैं कोई जानते नहीं, कोई जानते नहीं। नॉलेज बहुत कम उठा सकते हैं, पिछाड़ी में करके राजाई मिली उससे क्या, बहुत थोड़ा सुख हुआ ना, दुख तो आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो जाता है। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। कितने नए बच्चे तीखे हो गए हैं, पुराने अटेंशन नहीं देते हैं, देह अभिमान बहुत है। सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। वहां कहा जाता है ना, अंदर एक बाहर दूसरा, कहा जाता है ना, अंदर तो कुछ है और बाहर कुछ बोल रहे हैं। बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को करेंगे, कोई बाहर से अच्छे अंदर से खराब होते हैं, कोई सर्विस नहीं करते, अंधों की लाठी नहीं बनते। अभी मरने जीने का सवाल है, अमरपुरी में ऊंच पद पाना है, मालूम पड़ता है किस किसने कल्प पहले पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया है। वे सब देखने में आता है, जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना सेफ्टी में चलते रहेंगे। देह अभिमान हरा देता है, देह अभिमान हरा देता है। बाप तो कहेंगे श्री मत पर जितना रूहानी सर्विस में चल सको उतना अच्छा है। सबको बाबा समझाते हैं, चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां तो सब हैं, वे शिव बाबा है बड़ा बाबा। फिर नई सृष्टि रचते हैं, गाते भी हैं मनुष्य से देवता किए, करत न लागी बात। मनुष्य से देवता बनाए परंतु देवता बनाने में देर नहीं लगी। सिख धर्म वाले भी, सिख धर्म वाले भी उस भगवान की महिमा करते हैं। गुरु नानक के अक्षर बहुत अच्छे हैं, जाप साहेब को तो सुख मिलेगा। उनकी दो छोटी छोटी किताबें हैं, हाँ जी, उनकी जो छोटी छोटी दो बुक्स हैं उनका नाम है जाप जी साहेब और सुख मणि। तो उससे बाबा ने निकाला, जाप साहेब को तो सुख मिलेगा, ये है तंत्र सार। सच्चे साहेब को याद करेंगे तो सुख पाएंगे, अर्थात वर्षा मिलेगा। मानते तो हैं एक ओंकार सतनाम वाहे गुरु कर्ता पुरख अकाल मूरत, और को काल नहीं खा सकता, आत्मा को काल नहीं खा सकता। आत्मा मैली होती है, बाकी विनाश नहीं होती, इसलिए अकाल मूरत कहते हैं। बाप समझाते हैं, मैं अकाल मूरत हूं तो आत्माएं भी अविनाशी। हाँ, बाकी पुनर्जन्म लेकर हम पुनर्जन्म में आती हैं, हम एक रस हैं, साफ बतलाते हैं मैं ज्ञान का सागर हूं, रूप बसंत भी हूं। याद आता है रूप बसंत ना? तो ये बातें समझ कर समझानी है, अंधों की लाठी बनना है, जिए दान देना है, फिर कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। अच्छा, तुम अकाल पर विजय पाते हो, तुम काल पर विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, श्री मत पर रूहानी सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है, शंख ध्वनि जरूर करनी है। श्री मत पर रूहानी सेवा करनी है, अंधों की लाठी बनना है अर्थात उनको रास्ता दिखाना है, शंख ध्वनि जरूर करनी है, ज्ञान जरूर सबको सुनाना है, देही अभिमानी बनने के लिए याद का चार्ट रखना है, रात को जागकर खास याद करना है, याद में थकना नहीं है। वरदान, सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहे, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाव। सदा अपनी शान में रहे, परेशानियों को मिटाने वाले क्या बनो, मास्टर सर्वशक्तिवान भाव। सदा ये वरदान स्मृति में रहे कि हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले औरों को भी परेशानी को मिटाने वाले हैं, औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, कमजोर नहीं, कमजोर नहीं, श्रेष्ठ शान के तख्त नशीन हैं, जो अकाल तख्त नशीन, बाप के दिल तख्त नशीन, श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, वे स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। कोई कितना भी परेशान करे, कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन अपनी श्रेष्ठ शान में ही रहते हैं, अपनी श्रेष्ठ शान में ही रहते हैं। स्लोगन है, सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। स्वमान में रहेंगे तो सबके साथ व्यवहार अच्छा करेंगे तो सारे आपको भी सम्मान देंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।